आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर के रोज आम बजट पर बहस दोबारा शुरू होगी। भारत ने इंसदादे दहशतगर्दी और मनशियात की नाजायज तजारत के अलावा दीगर मामलों पर बिम्स्टेक में तआवुन करने पर जोर दिया है। कौमी टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए नजरेसानीशुदा नतायज जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अग्निवीरों के लिए नौकरियों में कोटे का ऐलान किया है। आसाम के मोइडम्स को सकाफती जुमरे में यूनेस्को का आलमी आसार कदीमा के मकाम का खिताब मिला है। श्रीलंका के दाम्बुला में खवातीन के एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। इसी दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला जारी है और पेरिस ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज आज रात दरियाए सीन के किनारे हो रहा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट 2024-25 पर पीर के रोज फिर से बहस होगी। आज राज्यसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए वाईएसआरसीपी के रुकन एस निरंजन रेड्डी ने बजट की सताइश करते हुए कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट में कलील मुद्दती अवाम पसंद ख्यालात के बजाय दरमियानी और तवील मुद्दती नजरियात को अपनाया है। सीपीआई के रुकन पी संतोष कुमार ने इल्जाम लगाया कि बजट अवाम मुखालिफ है। लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी के जुगल किशोर ने कहा कि यह बजट इक्तसादी और समाजी नुक्ते नजर से अहम है और यह लोगों के लिए निहायत फायदेमंद साबित होगा। कांग्रेस के जयप्रकाश ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत हरियाणा के जेरे इल्तवा प्रोजेक्टों को अहमियत नहीं दे रही है। लोकसभा में बाद में प्राइवेट मेंबरान के मामलात पेश किए गए जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस साल की मीटिंग का मौजू विकसित भारत एट 2047 है और इसमें भारत को एक तरक्याफ्ता मुल्क बनाने पर बुनियादी तवज्जो मरकूज की जाएगी। नीति आयोग के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का मकसद हुकूमती शराकतदारी और मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान तआवुन को फरोग देना है जिससे शहरी और देही अवाम के तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इस मीटिंग में विकसित भारत के हदफ के हसूल में रियासतों के रोल पर तफसीली बहस और मुबासा भी शामिल है। वाजे रहे कि वजीर आजम नीति आयोग के चेयरपर्सन भी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दरास में कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर कारगिल जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें यह बावर कराता है कि कौम के लिए दी गई कुर्बानियां लाफानी हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों से मुतालिक पाकिस्तान की तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारतीय फौज पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी का खात्मा करेगी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरे के दौरान वजीर आजम ने लद्दाख में शिनकुनला टनल प्रोजेक्ट की तामीर का भी आगाज किया जो लेह को हमा मौसमी कनेक्टिविटी फराहम करेगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज दहशतगर्दी की रोकथाम मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग नीज मुनज्जम जरायम से निमटने के लिए बामी इश्तराक को तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। म्यांमा के नेपिता में बिम्स्टेक के इजलास में भारत की तरफ से कौमी बयान देते हुए उन्होंने बिम्स्टेक मुल्कों के दरमियान राब्ते दूसरे बंदरगाही कॉन्क्लेव के इनकाद और हिमालयाई दरियाई निजाम में आबी तहफ्फुज़ जैसे मौजूदात पर भी गुफ्तगू की। कौमी सलामती के मुशीर ने कसीर शोबाजाती तकनीकी और इकतसादी तआवुन के लिए खलीज बंगाल पहल बिम्स्टेक के सिक्योरिटी सरबराहान की चौथी सालाना मीटिंग में भारतीय वफद की क्यादत की। उन्होंने म्यांमा के कौमी सलामती के मुशीर एडमिरल मियोंग के साथ भी मीटिंग की। बिम्स्टेक के सिक्योरिटी सरबराहों ने वजीर आजम सीनियर जनरल मिन ऑंग ह्यांग से मुलाकात की। कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज कौमी अहलियत नीज दाखिला टेस्ट नीट यूजी के नजरसानीशुदा स्कोर कार्ड जारी किए। नीट के लिए जिन उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया है वो अपने नतायज और स्कोर कार्ड सरकारी वेबसाइट exams@nta.ac.in और neet.nta.online.ac.in इन पर देख सकते हैं। एजेंसी ने ऐलान किया कि 17 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल किया है। एनटीए ने 5 मई को 571 शहरों में 4,750 से ज्यादा मराकज पर 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान का इनेकाद किया था। एनटीए ने यह भी बताया कि उन 1,563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान का इनेकाद 23 जून को किया गया था, जिन्हें इम्तिहान के दौरान वक्त के नुकसान का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुनासिब मौका फराहम किया जाएगा। अग्निवीर स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आला ने कहा कि मुल्क अग्निवीरों की शक्ल में तरबियत याफ्ता और नज्मो नस्क के हामिल सिपाहियों से इस्तेफादा करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे।
मध्य प्रदेश की सरकार ने रियासती पुलिस महकमे में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आला मोहन यादव ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अग्निवीरों को रिजर्वेशन फराहम करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी।
भारत और अमरीका ने भारत से चोरी किए गए नवादरात को अमरीका से वापस लाने के लिए सकाफती इमलाक के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौते के तहत दोनों ममालिक कदीम नवादरात और कदीम सकाफती मवाद की गैरकानूनी तिजारत, दरामद, बरामद और नाजायज तिजारत को रोकने और उस पर पाबंदी लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये अमरीका के साथ सकाफती इमलाक का पहला समझौता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने समझौते पर दस्तखत करने को तारीखी करार दिया और कहा कि ये बैन सकाफती नमू को फरोग देते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मुस्तहकम करेगा।
भारत से की अमेरिका में जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां अब भारत में सुगमता के साथ में वापस लाई जा सकेंगी। ये एग्रीमेंट अमेरिका से प्रॉपर्टीज आने के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के साथ में होने से आने वाले समय में दूसरे अन्य देशों के बीच में भी इस तरह का एग्रीमेंट हो सके, इसी संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं, तो ये भारत के लिए जो है आज ये एग्रीमेंट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी दौरान भारत में अमरीकी सफीर एरिक गासिटी ने कहा कि यह समझौता भारत को अमरीका के बाहमी सकाफती इमलाक के समझौते का 30वां शरीक बनने के साथ भारत को उसका हक देने के तहत एक अहम कदम है। आसाम के मॉयडम्स यानी मकबरों को सकाफती जुमरे में यूनेस्को की आलमी आसार कदीमा के 43वें मकाम का लकब हासिल हुआ है। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इन मकबरों के तारीखी तौर पर तस्लीम किए जाने से इस मुनफरिद सकाफती विरसे के तई आलमी तवज्जो मबजूल होगी। आज अमरीका के साथ सकाफती इमलाक के समझौते पर दस्तखत किए जाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद अमरीका से तारीखी अशिया को भारत वापस लाना आसान होगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आसाम के शेराइडो मॉयडम को यूनेस्को की आलमी आसार कदीमा की फहरिस्त में शामिल करने पर इजहार मसर्रत और इजहार फख्र किया। वजीर खाजा डॉ एस जयशंकर ने भी आज फख्र का इजहार किया क्योंकि अहम सकाफत की अलामत शेराइडो मॉयडम को यूनेस्को के जरिए आलमी सकाफती विरसे का मकाम करार दिया गया है। भारत ने तबाही की तैयारी से मुतालिक एशियाई मरकज एडीपीसी की सदारत संभाल ली है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि एडीपीसी एक खुद मुख्तार बैन अलावी तंजीम है जो एशिया और बहरुल काहिल खत्े में तबाही के खतरात को कम करने में ताउन और नफाज करती है। नीज आबोहवा की लचक को कायम रखने पर तवज्जो मरकूज करती है। 8 पड़ोसी ममालिक बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ भारत एडीपीसी का बानी रुकन है। तबाहकारी के इंतजामिया से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के एक रुकन राजेंद्र सिंह ने कल थाईलैंड के बैंकॉक में 2024-25 के लिए चीन से एडीपीसी की सदारत संभाल ली। कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में बताया कि 2018 के बाद से मुकर्रर करदा 661 हाईकोर्ट के जजों में से इस महीने की 22 तारीख तक 21 का ताल्लुक दर्जे फहरिस्त जातों के जुमरे, 12 का ताल्लुक दर्जे फहरिस्त कबाइल के जुमरे, 78 کا تعلق دیگر پسماندہ طبقات OBC کے زمرے اور 499 کا تعلق عام زمرے سے ہے۔ ایک تحریری جواب میں انہوں نے بتایا کہ حکومت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ججوں کی تقرری کے لیے تجاویز بھیجتے وقت یہ درخواست کرتی ہے کہ درجہ فہرست ذاتوں، درجہ فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے نیز خواتین مناسب امیدواروں پر غور کیا جانا چاہیے تاکہ ہائی کورٹوں کے ججوں کی تقرری میں سماجی تنوع کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت نے مالی سال 2022-23 کے دوران 424 ادویہ کو نقلی یا ملاوٹی قرار دیا، نیز 3053 ادویہ کو کم معیاری پایا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ادویہ کے معیار کو کنٹرول کرنے کی مرکزی تنظیم نے ریاستی ادویہ کے کنٹرولرز کے ساتھ مل کر 400 سے زیادہ احاطوں کا خطرے پر مبنی معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنیوں کی شناخت خطرے کے زمرے کی بنیاد پر کی گئی ہے، اس میں بہت سی ادویہ کو غیر معیاری قرار دیا گیا، ان کے بارے میں شکایتوں پر توجہ دی گئی ہے اور مصنوعات کی حساسیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں انتظامی کونسل نے آج جموں کشمیر صنعتی اراضی کے الاٹمنٹ کی پالیسی 2021-30 کی ترامیم کو منظوری دے دی۔ آکاشوانی جموں کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ماحصل پر مبنی موجودہ پالیسی کی مختلف شقوں کی وضاحت کرنے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں، جس کا مقصد زمین کے الاٹمنٹ کے عمل کو سہل بنانا اور کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی معیشت کے لیے جامع اہمیت رکھنے والی بڑی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے غرض سے حکومت کم از کم 4000 کروڑ روپے کی بڑی سرمایہ کاری کے بڑے پروجیکٹوں کو ترجیحی بنیاد پر زمین الاٹ کر سکتی ہے۔ سری لنکا کے دامبولا میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن بھارت نے اپنی برتری برقرار رکھی اور 81 رن کا جیت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہوئے میچ جیت لیا، جبکہ 54 گیندیں ابھی باقی تھیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی گیند بازوں رینوکا سنگھ اور رادھا یادو نے وقفے وقفے سے وکٹ لیتے ہوئے بلے بازوں کو میدان میں ٹکنے نہیں دیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 80 رن ہی بنا سکی۔ جواب میں بھارتی اوپنرز اسمرتی مندھانا اور شفالی ورما نے بڑی جافشانی سے آسانی کے ساتھ 11 اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 83 رن بنا لیے۔ مندھانا نے 39 گیندوں میں 55 رن بنائے، جبکہ شفالی ورما نے 28 گیندوں میں 26 رن بنائے۔ سری لنکا کے رنگیری دامبولا بین الاقوامی اسٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان خواتین ایشیا کپ کا دوسرا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 140 رن بنائے، جواب میں سری لنکا نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 10 اوورز میں 2 وکٹ پر 69 رن بنا لیے تھے۔ پیرس اولمپک 2024 کا آج باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے پیرس میں دریائے سین کے پاس ہوگی۔ اس سال اولمپکس کی 7 سالہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل کل بھارت نے پیرس اولمپکس میں اپنی مہم کا مثبت طور پر آغاز کیا۔ تیر اندازی میں درجہ بندی کے مرحلے میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے 3را مقام جبکہ خواتین نے 4تھا مقام حاصل کیا اور دونوں ہی ٹیموں نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بھارت کل پیرس اولمپکس میں تمغوں کے لیے اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ بھارت کے مردوں کی 10 میٹر ایئر رائفل اور 10 میٹر ایئر پسٹل کی مکس ٹیم اور شوٹنگ میں خواتین کی ٹیم کے مقابلے ہوں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کے روز عام بجٹ پر بحث دوبارہ شروع ہوگی۔ بھارت نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی ناجائز تجارت کے علاوہ دیگر معاملات پر بمسٹیک میں تعاون کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ UG 2024 کے لیے نظر ثانی شدہ نتائج جاری کیے ہیں۔ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کی سرکاروں نے اگنی ویروں کے لیے نوکریوں میں کوٹے کا اعلان کیا ہے۔ آسام کے موئڈمز کو ثقافتی زمرے میں یونیسکو کا عالمی آثار قدیمہ کے مقام کا خطاب ملا ہے۔ سری لنکا کے دامبولا میں خواتین کے ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ اسی دوران پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے سیمی فائنل کا مقابلہ جاری ہے اور پیرس اولمپکس کا باقاعدہ آغاز آج رات دریائے سین کے کنارے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔